राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धरि जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंदन जय यशोदनंदन जय ब्रज जन रंदन जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बन चारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद्ष डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देवी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी और All glories to servant devotees. All glories to servant devotees. All glories to servant devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Sri Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Sri Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 14। अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं, पयार संख्या 49 और 50। 49 का तात्पर्य नहीं है तो केवल मैं पढ़ूंगा, फिर 50वां एक साथ पढ़ेंगे। गंगा स्नान करी पूजा करी लेला गीला करी तेला गीला कन्या गण मध्य प्रभु आसिया बसीला। जब कन्याएं गंगा स्नान करके विभिन्न देवताओं की पूजा करने लगती तो बालक महाप्रभु वहां आते और उनके बीच में बैठ जाते। बड़ी अद्भुत लीला है। कन्याएं स्नान करके गंगा स्नान करके आई हैं देवताओं की पूजा करने के लिए और बीच में आकर के बैठ गए, है ना। बालक है ना, तो चंचल बालक है, तो उसे कुछ भी लज्जा नहीं होती, है ना। तो ये जो है युवावस्था की लीलाएं नहीं है, ये बाल लीला है, है ना। तो चंचल बालक जो है लड़कियों के बीच में आकर के बैठ गया, है ना। अब मेरे साथ मेरे पीछे बोलिए। कन्या रे कहे अमा पूज अमिति बावर। गंगा दुर्गा दासी मोरा महेश है किंकर। कन्या रे कहे अमा पूज अमिति बावर। गंगा दुर्गा दासी मोरा महेश है किंकर। कन्या रे कहे अमा पूज अमिति बावर। गंगा दुर्गा दासी मोरा महेश है किंकर। वैष्णव देविया शब्दार्थ बोलिए। कन्हारे कहे कन्याओं को संबोधित करके महाप्रभु कहते आमा पूजा मेरी पूजा करो मेरी पूजा करो भगवान जो है बालक हैं कहते हैं मेरी पूजा करो। आमी मैं देव दूंगा वर उत्तम पति गंगा गंगा दुर्गा दुर्गा देवी दासी दासियां मोरा मेरे महेश शिवजी किंकर दास। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। महाप्रभु कन्याओं को संबोधित करके कहते मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हें सुंदर पति या सुंदर वरदान दूंगा। गंगा तथा देवी दुर्गा मेरी दासियां हैं और अन्य देवताओं की तो बात दूर रही और अन्य देवताओं की बात तो दूर रही शिवजी तक मेरे दास हैं। तो भगवान जो है वैसे मनुष्य लीला कर रहे हैं और एक जैसे बालक चंचलता करता है उसी प्रकार से बातें कर रहे हैं। और ये कन्याएं जो है भगवान को डांटते हैं तो डांट भी खाते हैं। भगवान तत्व की बात तो बता रहे हैं लेकिन अपने को छिपा भी रहे हैं। जैसे एक चंचल बालक है वो कुछ भी बोले उसे कुछ पता नहीं वो क्या बोल रहा है। जिस तरह से भगवान बोल रहे हैं हालांकि तत्व की बात बता रहे हैं लेकिन कौन समझेगा। ये जो कन्याएं हैं यहाँ जहाँ भी शब्द आए कन्या शब्द आया है। कन्या शब्द मतलब है अविवाहिता स्त्रियाँ अविवाहिता जो बालिकाएं हैं कन्या कहलाती हैं। और कन्याएं जब पूजा करती हैं तो उत्तम पति के लिए पूजा करती हैं उत्तम पति प्राप्त हो। तो यहाँ पर कन्यारे कहे कन्याओं से कहते हैं उन्हीं के बीच में बैठ गए अपनी पूजा कराने के लिए और कहते हैं आमा पूजो मेरी पूजा करो। ये बड़ी डिस्टर्बेंस की बात है ना कि जब पूजा कर रहे हैं और किसी देवता की मूर्ति है या कुछ भी है और सब तैयारी हो गई चढ़ावा पूजा की सब सामग्री तैयार है और बीच में कोई आ जाए चंचल बालक आ जाए और कहे मेरी पूजा करो तो बड़ा से डिस्टर्बेंस होता है ना। तो यहाँ पर जो है एकदम से इन्होंने क्या कर दिया कि डिस्टर्बेंस कर दिया कि मेरी पूजा करो और मैं वर दूंगा। और क्या कहते हैं गंगा दुर्गा दासी मोरा उत्तम पति प्राप्त करने के लिए कन्याएं हैं गंगा जी की पूजा करते हैं दुर्गा जी की पूजा करते हैं महादेव की पूजा करते हैं। तो गंगा दुर्गा तो मेरी दासियां हैं तो उनकी पूजा को छोड़ करके अगर मेरी पूजा करोगे तो कोई दोष नहीं लगेगा भगवान कह रहे हैं। उनकी पूजा को बीच में भी छोड़ दो और मेरी पूजा करोगे मेरी पूजा करने के लिए उनकी पूजा को बीच में भी छोड़ दो तो भी कोई दोष नहीं लगेगा वो बुरा नहीं मान सकते उनकी हिम्मत नहीं बुरा मानने की भगवान कह रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वे बुरा माने बल्कि वो और प्रसन्न होंगे गंगा जी दुर्गा जी प्रसन्न होंगी और दासीमोरा महेश किंकर और जो महेश हैं मतलब महादेव देवताओं में जो सबसे बड़े हैं देवता महादेव कहलाते हैं वो मेरे किंकर हैं तो फिर अन्य देवताओं की बात क्या कहें है ना। आमी देव वर हम तुमको वर देंगे तो वर के दो अर्थ हैं इसलिए प्रभुपाद जो है अनुवाद में लिखते हैं सुंदर पति या सुंदर वरदान वर दोनों वर का मतलब दोनों अर्थ है वर का मतलब पति भी है। आमी देव वर मैं तुम्हें वर दूंगा यानी पति दूंगा और दूसरा वर का मतलब जो भी तुम वरदान चाहो वो दूंगा तो दोनों वर दोनों प्रकार के वर दूंगा है ना भगवान कहते हैं है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं शिला प्रभुपाद की। अन्य धर्म के लोगों में यथा ईसाइयों तथा मुसलमानों में ऐसी गलत धारणा है कि हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर हैं तो प्रभुपाद जो है इस श्लोक के तत्व को लेकर के पूरा तात्पर्य लिख रहे हैं। क्योंकि भगवान जो है जो बात बता रहे हैं वो तत्व की बात बता रहे हैं, तो उसको लेकर के प्रभुपाद तात्पर्य पूरा तात्पर्य लिख रहे हैं। जबकि यहाँ पर भगवान की लीला भी है, एक चंचलता, एक बालक होता है वो चंचल होता है तो चंचलता में कुछ बात बोलता है ना, और अपने को छिपा भी रहे हैं भगवान, अपना तत्व भी छिपा रहे हैं और तत्व के बाद में बता रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जो है इस तत्व को लेकर के पूरा तात्पर्य लिख रहे हैं है? तो क्या प्रभुपाद लिख रहे हैं, अन्य धर्म के लोगों में यथा ईसाइयों मुसलमानों में ऐसी गलत धारणा है कि हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर हैं, तो वो सोचते हैं, और हिंदुओं में भी इस प्रकार से अपने अपने मत, तो कोई गणेश को ही सर्वोच्च मानते हैं, कोई शिव जी को, कोई दुर्गा देवी को सर्वोच्च मानते हैं, तो हिंदुओं में भी इस प्रकार का ज्ञान फैला हुआ है ना। जब हिंदुओं में जिस प्रकार का ज्ञान फैला हुआ है, कोई शाक्त है तो शक्ति की उपासना करता है, कोई शैव है शिव की उपासना करता है, तो वैष्णव तो विष्णु की उपासना करते हैं तो वो तो सर्वोच्च हैं, विष्णु तो सर्वोच्च हैं, लेकिन जो दूसरे दूसरे हैं तो वो जो है अपने अपने देवी और देवताओं की उपासना करते हैं। और शाक्तों में भी जो है अनेक भेद हैं, तो कोई दुर्गा की उपासना करता है, कोई संतोषी माता की उपासना करते हैं, कोई इस माता कोई उस माता, कई तरह की माताओं की उपासना करते हैं। तो चूंकि हिंदुओं में ही इस प्रकार का ज्ञान फैला हुआ है, तो फिर जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो अगर इस प्रकार का आरोप लगाएं तो उनका फिर क्या दोष। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अन्य धर्म के लोगों में यथा ईसाइयों मुसलमानों में ऐसी गलत धारणा है कि हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर हैं, है ना, इसे कहते हैं बहुईश्वरवाद, बहु ईश्वरवाद, तो ये बहु ईश्वरवाद है। और बहुत से लोग बोलते भी हैं कि यहाँ किसी भी देवता की पूजा करो एक ही गंतव्य प्राप्त होगा, तो वो निराकारवादी हैं, तो वो ईश्वर को मानते ही नहीं, ईश्वर के रूप को ही नहीं मानते हैं, इसलिए वे किसी भी देवता की पूजा करने के लिए समर्थन करते हैं कि किसी भी देवता की पूजा करो, अंत में क्या होगा, वो रूप समाप्त हो जाएगा, आप भी समाप्त हो जाएंगे और क्या हो जाएगा, केवल शून्य बचेगा। तो ऐसे निर्विशेषवादी हैं, शून्यवादी हैं, तो वे भी जो है किसी भी पूजा का विरोध नहीं करते, किसी की भी पूजा करो, है ना, लेकिन अंत में वो क्या बताते हैं, सब शून्य हो जाता है, आप भी शून्य हो जाएंगे और वो देवता भी शून्य हो जाएगा, हाँ, और आपकी पूजा भी शून्य हो जाएगी, सब शून्य हो जाएगा। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं वास्तव में हकीकत नहीं है, ईश्वर एक है लेकिन ऐसे अनेक शक्तिमान जीव हैं जो प्रशासन के विभिन्न विभागों का कार्यभार संभालते हैं। तो आज के प्रयार में जो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये तत्व की बात है कि गंगा और दुर्गा दासी हैं, दासियां हैं, है ना, तो वे भी ईश्वरी हैं, गंगा जी भी ईश्वरी हैं, दुर्गा जी भी ईश्वरी हैं और शिव जी भी ईश्वर हैं, लेकिन ये दास हैं किसके, परमेश्वर के, ईश्वरा परमहा कृष्ण, तो जितने भी ईश्वर हैं वे सब परमेश्वर के ही अधीन हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं ये देवता कहलाते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने अंग्रेजी में एक अलग शब्द दिया देवताओं के लिए, क्या, डेमिगॉड, ये पहले कहीं अंग्रेजी में ऐसा शब्द कहीं नहीं था, तो मैं नहीं जानता प्रभुपाद के पहले किसी ने ऐसा दिया हो शब्द, है ना, गॉड्स, गॉड, देवताओं के लिए भी गॉड बोलते हैं, भगवान के लिए भी गॉड बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने ये शब्द दिया डेमिगॉड, है ना, और कृष्ण के लिए क्या शब्द दिया, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। तो प्रभुपाद के अंग्रेजी की जो शब्दावली है ये बहुत स्पष्ट है, जिससे कि हर सेंटेंस में, हर वाक्य में मतलब पता चलता है कि चाहे शिव जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे कोई भी देवता हो, उनको डेमिगॉड किस श्रेणी में रख करके प्रभुपाद ने हर बात में ये इसको जो है अंतर बताया है, इस बात का अंतर बताया है कि कृष्ण अलग हैं, वे जो है देवताओं की श्रेणी में नहीं है। तो अंग्रेजी के शब्द भी जो है प्रभुपाद ने ऐसे दिए हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं दिए, है ना, डेमिगॉड, है ना। तो हाँ प्रभुपाल लिख रहे हैं ये देवता कहलाते हैं, सारे देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करने वाले दास हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इस तथ्य को अपने बाल्यकाल में प्रकट किया। कभी कभी लोग अज्ञानवश किसी विशेष वर की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। यहां पर वर का मतलब पति नहीं है, वर का मतलब वरदान। कभी कभी लोग अज्ञानवश किसी विशेष वर की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भक्त और उपासक बन जाए तो उसे वर की प्राप्ति के लिए देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की कृपा से उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है, यावान अर्थ उत्पाने सर्वतः संबलोदो देखे तावान सर्वेश्व वेदेश ब्राह्मण से विजानतः, कि गांवों में अलग अलग कुएं होते हैं अलग अलग प्रयोजन के लिए। कोई कुआं है तो उसमें वस्त्र हित हो जाते हैं, कोई कुआं है उसमें केवल स्नान ही किया जाता है, कोई कुआं है उसमें पानी पीने का जो जल है वो निकाला जाता है। तो अलग अलग प्रयोजन के लिए अलग कुएं होते हैं, लेकिन सर्वतः समृद्ध होते के लेकिन सब ओर से भरा हुआ जलाशय है तो उसे सभी कुओं के प्रयोजन उसी से पूरे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान की भक्ति और भगवान की पूजा में जितने देवताओं के कार्य हैं वो सब पूरे हो जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है अलग से देवताओं की पूजा करने की। तो प्रभुपाद लिखते हैं भगवद्गीता 7:20 और 7:28 में ऐसी देव पूजा की भर्त्सना की गई है। भर्त्सना मतलब भर्त्सना निंदा, निंदा की गई है। 7:20 में कामस्तस्य हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते न देवता तम तम नियम आस्थाए प्रकृतिया नियता सोया, जिनकी बुद्धि हर ली गई है और जो काम वासनाओं के कारण पागल हो चुके हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं और अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधानों का पालन करते हैं। ये 7:20 है गीता का, है ना। तो जिसमें क्या भगवान कह रहे हैं कि कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान हरण हो गया है। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि भौतिक संसार जन्म मृत्यु का है और मैं इस जीवन काल में कुछ भी वरदान पाना चाहता हूँ तो सब नष्ट हो जाएगा, इस जीवन के साथ वो नष्ट हो जाएगा, है ना। और फिर मुझे जन्म मरण का जो चक्र है वो प्राप्त होगा, वो फिर अनिश्चित है, सब कुछ अनिश्चित है। तो ये ज्ञान जिनका हरण हो जाता है तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं किसी कामना को पूरी करने के लिए। जबकि जन्म मरण का जो इतना भारी कष्ट है, इतना भारी संकट है, उससे वो छूटना नहीं चाहते हैं। तो ज्ञान हरण है उनका, ज्ञान उनका हर लिया गया है कामनाओं के द्वारा, है ना। तो फिर प्रभुपाद श्लोक उद्धृत करते हैं गीता के 7:28 श्लोक, ये साम तुंत कदम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता, किंतु जो लोग सारे पाप कर्मों और द्वंद्व से मुक्त हैं वे दृढ़ता के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लग जाते हैं। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, जिनके पाप समाप्त हो चुके हैं इसलिए वो द्वंद्व के मोह से मुक्त हैं, सुख दुख रूपी द्वंद्व के मोह से मुक्त हैं। तो वे जो है मेरा भजन करते हैं दृढ़ व्रता, दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते हैं। क्या दृढ़ निश्चय है? जरा मरण मोक्षा है, बुढ़ापा और मृत्यु से मुझे छूटना है पहले, फिर कुछ और कामनाएं पूरी करूं कि नहीं। जिनके अंदर जो है बुढ़ापा मृत्यु से तो छूटने की कोई इच्छा नहीं है, बुढ़ापा मृत्यु का संकट तो है ही है, और कामनाओं को पूरा करना चाहते हैं मूर्ख। जब वृद्धावस्था आएगी तो जितनी भी आपकी काम उपभोग की वस्तुएं हैं उनका आप कैसे भोग करोगे, और मृत्यु आएगी तो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जिनके पाप नष्ट हो गए हैं तो वे इस द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर के दृढ़ निश्चय के साथ मेरा भजन करते हैं कि मुझे बुढ़ापा और मृत्यु से छूटना है। भजन ते माम दृढ़ व्रता, दृढ़ निश्चय से भजन करते हैं, है ना। तो वे अन्य देवताओं के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि अन्य देवता बुढ़ापा और मृत्यु से नहीं छुड़ा सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, केवल मूर्ख ही अपने विविध प्रयोजनों के लिए देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु जो अत्यंत बुद्धिमान हैं वे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की ही पूजा करते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कभी कभी हम पर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों पर आरोप लगाया जाता है कि हम देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करते। तो यह है, लोग जो है हरे कृष्णा वालों की निंदा करते हैं, हैं कि हरे कृष्णा वाले जो है एक ही लकीर के फकीर, एक लकीर के फकीर हैं ये, तो है ना, इनको जो है मतलब हरे कृष्णा के अलावा और कुछ सुनते नहीं और कुछ जानते नहीं, कुछ बताते नहीं, है ना, सुनना नहीं चाहते और कुछ बताना नहीं चाहते, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भागवत आंदोलन के सदस्यों पर आरोप लगाया जाता है कि हम देवताओं की पूजा का समर्थन नहीं करते, है ना। किंतु जब चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान कृष्ण ने इसकी भर्त्सना की है तो हम इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं। जब कृष्ण निंदा कर रहे हैं, कैसे निंदा कर रहे हैं, जिनका ज्ञान हरण हो चुका है कामनाओं के द्वारा, वे अन्य देवताओं की पूजा, अन्य देवताएं मुझे छोड़ करके, कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, है ना। और 23वें श्लोक में फिर भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तत्वति अल्पमेधसाम, उनका जो फल है वो अंतवान होता है, हाँ, और वे अल्पमेधसाम, अल्प बुद्धि वाले हैं, जिनका ज्ञान हरण हो चुका है अल्प बुद्धि वाले हैं, तो भगवान ऐसी बात बता रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं कि जो वरदान चाहिए मुझसे लो, जरूरत क्या है दुर्गा और गंगा से वरदान लेने की या शिव जी से वरदान लेने की, मैं दूंगा तो मैं वरदान, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भला हम अन्य लोगों को मूर्ख तथा हृत ज्ञान बुद्धिहीन कैसे होने दे सकते हैं, हम कैसे होने दें, क्योंकि गीता पर आधारित है ये आंदोलन, भगवद गीता पर आधारित है, तो जब गीता में भगवान बता रहे हैं क्या मूर्ख और हित ज्ञान, तो हम लोगों को कैसे होने दें मूर्ख और हित ज्ञान। ये आंदोलन मूर्खता को दूर करने के लिए है, ज्ञान देने के लिए है, है ना। आगे, हमारा प्रचार तो इतना ही है कि बुद्धिमान लोग पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझें और उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझें जो परिपूर्ण आध्यात्मिक अस्तित्व है, परिपूर्ण आध्यात्मिक अस्तित्व, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है कृष्ण है, परिपूर्ण आध्यात्मिक तत्व है, मतलब उनके शरीर में किसी प्रकार की भौतिकता नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह, तो शिव जी हैं या और भी जितने देवता हैं तो उनका शरीर पूर्ण आध्यात्मिक नहीं है, पूर्ण आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन कृष्ण है, श्री कृष्णम प्रकृतये परम, तो भौतिक प्रकृति से परे श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह, उनका ही शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यही हमारा जीवन कार्य है, हमारे जीवन का कार्य यही है, हमारा पूरा जीवन इसी कार्य में समर्पित है, है? कि लोगों को समझाएं हम पदार्थ आत्मा में अंतर, तो हम पदार्थ से छूटे और शुद्ध आत्म तत्व को प्राप्त करें। प्राभवस्तावदबोध जातो यावन जिज्ञासन आत्म तत्वम, तो जब तक कोई व्यक्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता है तब तक जीवन में पराभव की प्राप्ति होगी। तो आत्म तत्व, हम जाने कि हम क्या हैं, हम पदार्थ नहीं हैं, हम आत्मा हैं, है ना। तो फिर वो स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण की शरण लेनी होगी ताकि हम पदार्थ के संपर्क से छूट सकें। पदार्थ के संपर्क के कारण ही हमें जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। आगे प्रभुपाद लेते हैं, भला हम इस भौतिक जगत के भौतिक शरीरों में विद्यमान तथा कथित देवताओं की पूजा करने के लिए लोगों को दिग्भ्रमित कैसे कर सकते हैं। तो शिव जी का शरीर भी पूर्ण आध्यात्मिक नहीं है, उसमें भी कुछ भौतिकता है, जैसे बताया गया है क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा प्रतिगस्ति हेतु या संभुताम अपि तथा समपेति कार्यात् गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे दूध में खटाई का विकार आने से वो दही बन जाता है, उसी प्रकार से जो संभुता को प्राप्त करते हैं तो कृष्ण ही शिव बनते हैं, कृष्ण ही शिव बनते हैं। जैसे दही दूध से ही बनता है, दूध ही दही बनता है, दही अलग से नहीं होता है, दूध ही दही बनता है। उसी प्रकार से कृष्ण ही संभुता को प्राप्त करते हैं। इन कैसे माया का जो संपर्क है जब होता है तो वो संभुता को प्राप्त करते हैं। तो प्रकृति का संपर्क है शिव जी में, लेकिन कृष्ण में प्रकृति का संपर्क नहीं है, विशुद्ध विशुद्ध तत्व। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भला हम इस भौतिक जगत के भौतिक शरीर में विद्यमान तथा कथित देवताओं की पूजा करने के लिए लोगों को दिग्भ्रमित कैसे कर सकते हैं, हम कैसे दिग्भ्रमित करें? अगर हमारे पास आंखें हैं और अंधा व्यक्ति अगर गड्ढे में गिर रहा है तो हम कैसे देख सकते हैं कि वो गड्ढे में गिरे और हम उसको ना रोकें? वो अंधा व्यक्ति नहीं देख रहा है तो हो सकता है वो नाराज हो हमारे ऊपर कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। अंधा व्यक्ति नाराज भी होता है लेकिन जो देखने वाला है वो व्यक्ति फिर भी बचाने की कोशिश करता है। फिर अगर नहीं बचना चाहता है और गड्ढे में गिरने की इच्छा है तो क्या कर सकते हैं? लेकिन जिसके पास आंखें हैं वो विरोध तो करता ही है कि क्यों जा रहे हो, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हमारे द्वारा सैकड़ों देवताओं की पूजा की अनुमति ना देने की स्थिति की पुष्टि चैतन्य महाप्रभु द्वारा उनके बाल्यकाल में ही की गई थी। इस संबंध में श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, अन्य देवाश्रय नाही तुम्हारे कहेनो भाई, यही पर यही भक्ति पर मैं करण। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दृढ़ एकनिष्ठ और शुद्ध भक्त बनने अनन्य भाग के लिए अपने चित्त को देवताओं की पूजा में लगाकर विचलित नहीं करना चाहिए, ऐसा नियंत्रण शुद्ध भक्ति का लक्षण है। ऐसा नियंत्रण यानी रुकावट, ऐसा नियंत्रण शुद्ध भक्ति का लक्षण है। तो हम जो है अगर रोकते हैं किसी को कि नहीं देवताओं की पूजा की जगह कृष्ण की पूजा करो तो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है, इसमें दोष नहीं हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर देवताओं की पूजा को छोड़ करके कृष्ण की पूजा करता है तो उसमें दोष नहीं है बल्कि बहुत बड़ा गुण है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ये लीला करके क्योंकि यहाँ पर गोवर्धन की पूजा में तो कृष्ण ने पहले से अपना सुझाव दिया था कि हमें इंद्र की पूजा को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करना चाहिए, तो वहाँ तो सभा में कृष्ण ने ये बात उठाई थी और फिर सभा में सबने विचार किया और फिर सबने निर्णय किया कि ठीक है गोवर्धन की पूजा करेंगे। लेकिन यहाँ तो कन्याओं के बीच में जाकर के बालक ने माई क्या बोल रहा है, मेरी पूजा करो, ये सब मेरे दास दासी हैं, उन्हीं के सामने बोल रहे हैं मेरी पूजा करो, है ना। तो इस तरह से भी अगर कोई बाधा डालता है देवताओं की पूजा में, कृष्ण की पूजा के लिए अगर देवताओं की पूजा में बाधा डालता है तो भी इसमें दोष नहीं है, यहाँ पर ये बताएंगे। फिर भी हमारा ये काम नहीं है, हमें हमारा ये काम नहीं कि लोगों को उद्विग्न करें, लोग तो उद्विग्न होंगे, तो हमारा ये काम नहीं है कि लोगों को उद्विग्न करें, लेकिन जहाँ हमें अवसर मिलता है तो हम बताते हैं और कृष्ण में और देवताओं में अंतर बताते हैं और देवताओं की पूजा से क्या प्राप्त होती है, कृष्ण की पूजा से क्या प्राप्त होता है, तो तत्व की बातें बताते हैं। और किसी व्यक्ति को उद्विग्न ना करने के लिए हम फिर ये भी कहते हैं कि ठीक है हरे कृष्ण मंत्र का आप जाप करो, जो कुछ करते हो पूजा अगर आप करना चाहते हो तो करो, लेकिन साथ साथ जोड़ो हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु एक चंचल बालक के रूप में आए हैं, तो चंचल बालक को तो सब कुछ शोभा देता है, वो जो कुछ भी करे है तो उसकी चंचलता जो है कुछ दोष नहीं मानी जाती है, एक बालक है। लेकिन हम लोग अगर किसी पूजा में जाकर के बीच में अगर बाधा डालें और एकदम से रोकें, बंद करो इसको, कृष्ण की पूजा करो तो अनावश्यक जो है वो द्वेग पैदा होगा और विरोध पैदा होगा और बहुत इसका दुष्परिणाम भी हो सकता है ना। इसलिए किसी प्रकार का दुष्परिणाम ना हो, इसके लिए हमारा जो आंदोलन है वो इस तरह का है कि जिस समय लोग जो है फुर्सत में सुनने के लिए तैयार हो तो उनको फिर हम बताएं कि ये तत्व की बात है, और वो व्यक्ति फिर धीरे धीरे पूजा छोड़ेगा, धीरे धीरे उसको जो है विचार करेगा, क्योंकि तो एकदम से परिवर्तन नहीं होता है उनके जीवन में। तो हम उनको जो है तत्व की बातें बताते हैं, प्रभुपाद ग्रंथ ही अगर देते हैं तो इतने से ही आपका काम बहुत बड़ा, बहुत बड़ा काम होता है कि आप प्रभुपाद ग्रंथ ही देते हैं या हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं और वो सुनते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा लाभ है। और वे इस दिशा में उनकी चेतना शुद्ध होती है तो बहुत बड़ा लाभ है ना। अब इसमें एक दूसरा विचार ये भी है, जो यहाँ चैतन्य महाप्रभु की लीला है ये कृष्ण की वैसी लीला नहीं है जैसे कि कृष्ण ब्रजी कन्याओं को छेड़ते हैं, ब्रजी कन्याओं को छेड़ते हैं और ब्रजी कन्याएं उनको पति भाव से याद करती हैं, तो कृष्ण भी जो है उनके पति के रूप में उनको जो छेड़ते हैं। यहाँ पर जो भाव है चैतन्य चरितामृत में आगे चल करके जो आता है तो यही है कि जो कन्याएं हैं वो कहती हैं तुम हमारे भाई लगते हो, गांव के रिश्ते से तुम हमारे भाई लगते हो, है ना। और चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं मैं वर दूंगा तुम लोगों को, वर दूंगा, तो स्वयं अपने को नहीं कहते कि मैं तुम्हारा पति बनूंगा या तुम मुझे पति रूप में प्राप्त करोगी, ये नहीं कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तुम्हें वर दूंगा, तुम्हें वर दूंगा, तुम्हें गुणवान पति मिलेगा, बहुत विद्वान होगा, बहुत सुंदर होगा, सदाचारी होगा और सात सात पुत्रों की तुम माता बनोगी, इस तरह से कहते हैं। और जो कन्या भाग जाती है उनको उनकी पूजा नहीं करती है तो उसको कहते हैं कि तुमको जो है ऐसा पति मिलेगा जो बूढ़ा होगा और चार चार सौतें होंगी तुम्हारी इस तरह से। तो यहाँ पर भाई के रूप में चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं, है ना, भाई के रूप में चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं। तो इसमें एक विचार और भी है कि कृष्ण जो ये लीलाएं करते हैं, मधुर लीलाएं करते हैं ब्रजी कन्याओं के साथ में, मधुर लीलाएं करते हैं, तो इसमें एक विचार ये भी है कि ब्रज में कृष्ण, मतलब अब हम ऐसे बाहर की दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें तो ब्रज में कृष्ण एक बालक हैं और एक अशिक्षित बालक हैं, एक अशिक्षित बालक तो 11 साल तक जब ब्रज में रहे कृष्ण तो एक अक्षर भी नहीं सीखा उन्होंने, है ना। तो ये जो भी लीलाएं हैं उनकी, कृष्ण की लीलाएं हैं, एक अशिक्षित बालक की लीलाएं। और जब 11 साल की अवस्था में जब कंस को मारा और फिर गुरुकुल में गए, फिर शिक्षित हुए, तो फिर वो बिल्कुल ऐसे हो गए कि पराई स्त्रियों को जो है कुछ भी नहीं, मतलब देखते तक नहीं। तो ये भी दिखाया कृष्ण ने कि एक अशिक्षित बालक। लेकिन नवद्वीप धाम जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया वो पहले से विद्या का केंद्र था और निमाई बालक को बचपन से ही बहुत पढ़ने लिखने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत छोटी अवस्था में जो है निमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध हो गए, 8 वर्ष की अवस्था में ही बहुत निपुण हो गए शास्त्रों में और बहुत बड़े विद्वान बन गए, पढ़ाना भी शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसी स्थिति में चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अगर मधुर लीलाओं का अगर आरोप लगाया जाता है, जैसे गौरांग नागरी का एक जो है संप्रदाय है तो भक्तिनो ठाकुर ने इसको अपसंप्रदाय माना है, तो गौरांग नागरी जो संप्रदाय है उसमें चैतन्य महाप्रभु को भी जो है इसी प्रकार से वो मानते हैं कि वे नवद्वीप की कन्याओं को छेड़ते हैं और पति के रूप में छेड़ते हैं। तो हमारे जो आचार्य हैं वो इसको जो है मतलब बिल्कुल विरोधी मानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु लीला जो इसमें है नवद्वीप में है तो ऐसे समाज में है जो कि विद्या का ही केंद्र है, तो ऐसे समाज में अगर जो है शिक्षित बालक होकर के अगर ऐसा आचरण करे तो ये बड़ी लज्जा की बात है। तो गौरांगनागी संप्रदाय जो है ये प्रामाणिक नहीं है, लेकिन वे चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं। और जैसे कृष्ण गोपियों के पति हैं, जो गोपियों के साथ मधुर लीलाएं करते हैं और विवाहित नहीं है तो भी मधुर लीलाएं करते हैं, तो उनकी लीलाओं में कोई दोष नहीं माना जाता है। तो उसी प्रकार से वे गौरांग नागरी संप्रदाय के लोग हैं, वे भी चैतन्य महाप्रभु में दोष नहीं मानते, चैतन्य महाप्रभु दोष नहीं मानते हैं कि वे छेड़ते हैं कन्याओं को, आप समझ रहे हैं। लेकिन तो भी ये लीला की दृष्टि से क्या है, अनुचित है, क्योंकि ब्रज में कृष्ण जो समाज में जो दिखला रहे हैं वो कैसी स्थिति में है, अशिक्षित, एक अशिक्षित बालक है। तो सामाजिक स्थिति में कृष्ण के ऊपर कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगाया जाता कि कृष्ण ने गीता में कहा है, कृष्ण गीता में कहा है यदि हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रता, कि अगर मैं बहुत सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं तो मेरे ही मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वदा, तो मेरे ही मार्ग में लोग भी चलने लगेंगे ना। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करे, तो ब्रज लीला में कृष्ण एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में व्यवहार नहीं कर रहे हैं, एक अशिक्षित बालक के रूप में व्यवहार कर रहे हैं जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, है? ना वो कोई शिक्षा देता है किसी को, एक अशिक्षित बालक है। तो इस तरह से कृष्ण जो लीलाएं कर रहे हैं ब्रज में, तो वो सामाजिक दृष्टि से वो किसी प्रकार का उत्पात पैदा नहीं करती, उसमें किसी को भी जो है अवसर नहीं मिलता है कृष्ण में दोष निकालने का। यहाँ तक कृष्ण की जो निंदा करने वाले हैं उन्होंने भी इन लीलाओं में कोई दोष नहीं निकाला, आप समझ रहे हैं। तो समाज की दृष्टि में कृष्ण जब शिक्षित हो गए और फिर आगे मथुरा की लीलाएं और द्वारका की लीलाएं करते हैं, तो वहां पर कोई किसी पर तरह की ऐसी लीला नहीं है कि पराय स्त्रियों को छेड़े, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु के पक्ष में अगर इस तरह का अगर आरोप लगाया जाता है, चाहे वो उनकी दिव्य लीला क्यों ना मानी जाए कि ये दिव्य लीला है, लेकिन वो भी जो है समाज की दृष्टि में वो अनुचित ही है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शिक्षित समाज में है और स्वयं शिक्षित हैं, और अगर ऐसा आचरण करें तो फिर वो समाज में कैसा करेगा, एक उत्पाद पैदा करेगा, है ना। तो इसलिए हम जो है इस पर विचार कर रहे थे कि जिस समय मिश्र जी ने पढ़ाना बंद कर दिया, जिस समय बालक ने माई को मिश्र जी ने पढ़ाना बंद कर दिया कि ये पढ़ लिख जाएगा तो ये भी विश्वरूप की तरह संन्यास ले लेगा, तो जब पढ़ाना बंद कर दिया तो चैतन्य भागवत ने लिखा है, तब उन्होंने फिर बहुत चंचलता शुरू कर दी। तब वो दिखा रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं क्या जानूँ मुझे क्या करना क्या नहीं करना, तो इतनी चंचलता करते थे कि शिकायत पर शिकायत आने लगी मिश्र जी के ऊपर, और सची माता भी जो है बहुत परेशान हो गई, और अशुद्ध स्थान में बैठे हैं, पूरे शरीर में काला काला लग गया है, स्नान नहीं करना चाहते हैं, उठना नहीं चाहते उस स्थान से, है ना। और अंत में मतलब ऐसी स्थिति आ गई कि जगन्नाथ मिश्र को जो है पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा, कि बालक को उन्होंने आज्ञा दी कि हाँ बेटा अब तू पढ़। तो ये जो है चंचलता उन्होंने उस समय के लिए की थी। तो छोटी अवस्था से पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो यहाँ पर चैतन्य महापुरुष चंचलता कर रहे हैं, वो भाई के रूप में चंचलता कर रहे हैं। आगे ये प्यारों में ये आएगा कि जो कन्याएं हैं वो कहती तुम हमारे भाई हो, और अपने बहनों को ही पति पाने का वरदान देते हैं। हालांकि चैतन्य भागवत में कुछ बातें ऐसी भी हैं कि चैतन्य महाप्रभु वस्त्र हरण कर लेते हैं उनके, और कुछ बात करते हैं, कुछ इस तरह की बातें करते हैं जैसे कृष्ण करते थे, लेकिन वो बहुत छोटी अवस्था में हैं, बालक ने माई जो करते हैं तो उसका जो है ज़्यादा वर्णन नहीं आता है, बहुत छोटी अवस्था में है। लेकिन जो कृष्ण की माधुरी लीला है वो ब्रज में है, वो किसी और अवतार में नहीं है। जो माधुरी लीला कृष्ण की ब्रज में हुई है वो दूसरे अवतार में नहीं है, और ये लीला जो है माधुरी लीला नहीं कही जाएगी, ये लीला है लावण्य लीला, ये लावण्य लीला है, माधुरी लीला नहीं है। माधुर्य लीला का मतलब होता है जो पति भाव से जब स्त्रियां जो है कृष्ण से प्रेम करती हैं और कृष्ण स्त्रियों से प्रेम करते हैं वो माधुर्य लीला आती है। लेकिन ये लावण्य लीला है, लावण्य लीला में बालक जो है चंचलता करता है, शैतानी करता है, और उनको तंग करता है ना, तो लावण्य लीला है, ये माधुर्य लीला नहीं है। छोटा सा बालक है तो कोई उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुछ सीखे, ना तो कुछ सीखने की जिम्मेदारी है उसके ऊपर, ना कुछ सिखाने की जिम्मेदारी है, और जो चाहे वैसा करे, अपनी मर्जी से करे, उसके मुंह में जो आता है सो बोल देता है, उसके मन में जो आता है सो करता है। तो इस तरह की जो बातें हैं अभी चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं इसमें। बहुत अच्छा महाराज ने, बहुत अच्छा ये जो बात उठाई है, बहुत अच्छा ये जो है विचार है, ये बात है विचार करने का। तो इसमें अभी हमें समझना पड़ेगा कि जब कृष्ण ने जो लीलाएं की, जो रासलीला की, तो इसका दर्शन मनुष्यों के समाज में किसी ने नहीं किया, मनुष्यों के समाज में इस लीला का दर्शन किसी ने नहीं किया, कोई भी नहीं जान सका इस लीला को। ये तो आकाश के जो देवता हैं, गंधर्व हैं, बहुत भाग्यशाली थे जिन्होंने दर्शन किया। और भगवान यौवन लीला कर रहे हैं, भगवान युवक होते हैं, और ये जो कन्याएं हैं वो भी युवतियां बन जाती हैं। तो ये सब जो है अचिंत्य है उस समय के समाज में। ये कृष्ण की जो मधुर लीलाएं हैं ये प्रकाशित ही नहीं हुई, कोई भी नहीं जान सका। ये तो देवता लोग जो बहुत भाग्यशाली थे उन्होंने दर्शन किए इस लीला के, गंधर्वों ने दर्शन किए, है ना, कोई नहीं जान सका। ये तो सबसे पहली बार जब जानने में आई तो व्यास देव ने श्रीमद् भागवत की रचना की, व्यास देव ने श्रीमद् भागवत की रचना की, और तब उन्होंने मतलब योगेश्वरेण कृष्णेन, है ना, तो योगेश्वर कृष्ण है, है ना, तो वो जो है ये लेखन कार्य जब व्यास देव ने श्रीमद् भागवत के रूप में किया और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, परीक्षित, तब जो है ये मानव समाज में सबसे पहली बार इस लीला का जो है वर्णन मिला। और ऐसे महाभागवत के द्वारा मिला इस लीला का वर्णन जो कि समझा सकता है कि इसकी गहराई क्या है, कैसी गहराई है। तो ये सब बाल लीला के अंदर है, लेकिन रासलीला में कृष्ण तो नवयुवक हैं और वो नवयुवतियाँ हैं, है ना। लेकिन 11 साल की अवस्था में तो कोई नवयुवक होता नहीं, जबकि द्वापर युग में तो आयु 100 साल से ज़्यादा होती थी, 11 द्वापर युग में तो 1000 साल की आयु बताएगी, तो 11 साल की अवस्था तो कुछ भी नहीं। तो ये सब जो है लीलाएं हैं ये अचिंत्य हैं, इनको मानव समाज में तो कुछ मतलब पता ही नहीं चला किसी को, और कोई सोच भी नहीं सकता कि कृष्ण युवक हो सकते हैं और युवक बनकर के लीलाएं कर सकते हैं। ये मानव समाज में कोई मतलब ये प्रकट ही नहीं हुई इस तरह की लीलाएं। तो ये चर्चा हमने की है, श्री भगवान ने कहा पुस्तक में ये चर्चा की है हमने। और बाकी जहाँ तक चैतन्य महाप्रभु की लीला है तो इसमें वो डांट भी खाते हैं। अब यहाँ चैतन्य महाप्रभु बालक निमाई कह रहे हैं कि मेरी पूजा करो, अभी जो कन्याएं हैं वो फिर डांटती हैं कि तुम हमारे भाई लगते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, तो डांट भी खा रहे हैं बालक निमाई जो है, डांट भी खा रहे हैं, है ना, अपने तत्व की बात भी बता रहे हैं, और साथ साथ जो तत्व नहीं जानते हैं, जो लड़कियां तत्व नहीं जानती हैं उनको डांट रही हैं, तो डांट भी खाते हैं, है ना, और साथ साथ उनको भयभीत भी करते हैं कि तुम मेरी पूजा नहीं करोगी तो तुमको ऐसा पति मिलेगा, तो भयभीत होकर के उनकी पूजा करते थे। तो ये सब जो है भगवान का ये कौतुक है, लीला कौतुक, इसको लीला कौतुक कहते हैं। तो भक्तों को जो है ये मतलब अनेक प्रकार से भगवान आश्चर्य में डालते हैं, तो ये उनका कौतुक कहलाता है। इस विषय में कुछ और कहना है आपको, विचार करने वाली बात है, तो बहुत गहरी बात है, ठीक है। और कोई चर्चा किसी की ओर से, हाँ जी धर्म नारायण देखा क्या हाँ 8 साल की अवस्था है नहीं, लेकिन वे जो है ये दिव्य लीला प्रकट करते हैं तो वे युवक हैं, पूर्ण युवक हैं, और इतने रूप भी प्रकट करते हैं कोई समझ नहीं सकता है, योगेश्वर इसलिए कहा गया है योगेश्वरेण कृष्णेन, योगेश्वर हैं कृष्ण, तो ये सब जो है माधुर्य लीलाएं हैं राधा कृष्ण की। तो वो जो है समाज की दृष्टि में अगर मान लो कुछ बात आई इस तरह की कि जैसे कृष्ण ने जो है वस्त्र उठा लिए, कृष्ण ने वस्त्र उठा लिए, उन कन्याओं के वस्त्र उठा लिए, तो अगर उस समय जो समाज था मनुष्यों का अगर कुछ बात आई तो उसमें कोई दोष नहीं माना गया। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मानव समाज में अगर कुछ इस तरह की बात अगर निकली भी, कुछ उठी भी, तो उसमें जो है कोई ऐसा दोष नहीं माना गया कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है वैसा लोग करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं। कृष्ण ऐसी स्थिति में नहीं है कि वे श्रेष्ठ हैं और समाज को जो है शिक्षा दे रहे हों, तो समाज में कोई शिक्षा नहीं दे रहे, वो तो चंचलता कर रहे हैं, है ना। तो ना उन्होंने कुछ सीखा है, ना कुछ सिखाया है, ना सीख रहे हैं, ना कुछ सिखा रहे हैं, वे चंचलता करते हैं। ब्रजवासियों को केवल आनंद दे रहे हैं, तो अपनी बाल लीलाओं का आनंद दे रहे हैं, तो अपनी चंचलता का आनंद दे रहे हैं। तो कृष्ण की चंचलता का ये एक आनंद है जो कि कृष्ण दे रहे हैं कि वे नहीं जानते हैं सब बातों को, है ना। तो ये अपने भक्तों को आनंद देते हैं इस तरह से, तो इसमें बहुत आनंद है, बहुत रस है, है ना। लेकिन कृष्ण जो है मनुष्य लीला कर रहे हैं, एक बालक। तो ये रास लीलाएं हैं, इसको यही समझना चाहिए कि मानव समाज में बिल्कुल प्रकट नहीं हुई और केवल देवताओं ने ही इनका दर्शन किया, मानव समाज में प्रकट ही नहीं हुई। ये इतना दिव्य लीलाएं हैं, ये मानव समाज के लिए बिल्कुल नहीं है ये। और भगवान अगर चाहें तो ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि ये जो है कोई भी नहीं इस विषय को जान सका। कृष्ण तो अपने को ईश्वर नहीं बता रहे हैं, कृष्ण तो मनुष्य लीला कर रहे हैं। तो कृष्ण अगर अपने को मनुष्य के रूप में ही अगर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये जो लीलाएं हैं इतनी गुप्त हैं, इतनी दिव्य हैं कि केवल देवता लोग, और वो भी बड़े भाग्यशाली देवता, सामान्य नहीं, बहुत भाग्यशाली देवता, उन्होंने ही दर्शन किया इस लीला का, ये समझना पड़ेगा। बलदेव जी की लीला हो या कृष्ण की लीला हो, इसको हम लोग जो है मानव समाज में था ही नहीं, कोई सोचना ही नहीं, कुछ भी पता नहीं इसकी विषय, इसको ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराश्री चैतन्य चरितामृत की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरता सीत राम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।
एक सूचना है सभी ब्रह्मचारी निवासी भक्तों के लिए, आज का जो ब्रह्मचारी